आज के मनन के लिए हम सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 20 पद तक। नवंबर 8 तारीख 2016 रात्रि 11 लगभग मैं सो रहा था और अचानक एक भाई मेरे कमरे में आए और कहने लगे, अंशुमन भाई उठो उठो, बाहर जाके देखो कितने भीड़ लगी हुई है और रास्ते में पूरा जाम लगा हुआ है और आज की रात से जो 500 और 1000 रुपए की नोट बंद हो जाएंगे, जाओ और देखो। और मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था और मैंने और चौके में उठ गया। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है और मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी कि कैसे ये घटना हो सकती है। हम देखते हैं इस घटना से हमारे पूरे भारत देश के लोग प्रभावित है। तो वैसे एक ऐसी घटना है जो लगभग 2000 साल पहले हुआ था जो पूरे विश्व भर के लोग प्रभावित है और आज भी बहुत सारे लोग उस घटना से अप्रभावित हो रही है। तो इसीलिए आज हम एक मुख्य बात को देखेंगे, एक मुख्य विषय देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में पापियों को बचाने के लिए आए। एक बड़ी बात आज हम देखेंगे इस खंड के आधार पर कि महान परमेश्वर मनुष्य के रूप में पापियों को बचाने के लिए आए। एक विशाल परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर जो अनादिकल से है, वही परमेश्वर मनुष्य के रूप में पापियों को बचाने के लिए आए। आज वही बात हम देखेंगे और उसके अंतर्गत हम 3 बिंदु को भी देखेंगे। 2 अध्याय 1 से 7 पद तक हम देखेंगे। ये एक वास्तविक घटना है जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए, ये एक वास्तविक घटना है। और 2 अध्याय 8 से 14 तक हम देखेंगे ये आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए है जो यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए हैं। ये आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए है। और तीसरा 2 अध्याय 15 से 20 पद तक हम देखेंगे आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। सबसे पहले और इस लूका रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं, ये सबसे एक अनोखा सुसमाचार है और इस सुसमाचार में हम ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं कि जो अन्य सुसमाचार में नहीं है। अगर आप 2 अध्याय को आप पढ़े होंगे, यहां पर कई सारे ऐसी घटना है जो अन्य सुसमाचार में हम नहीं देखते हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे ये एक वास्तविक घटना है। जैसे हम पिछले दिनों में अंकल जी के द्वारा सुन रहे थे कि बड़े दिन का मतलब खाने पीने और केक के बारे में नहीं है। कई बार हम बड़े दिन को बहुत सीमित कर देते हैं खाने पीने में और केक खाने में और हम उसको उसी के अंदर हम सीमित रख देते हैं। लेकिन जो बड़ा दिन है उससे कई बड़ा है, जो उससे बढ़कर है कि बड़ा दिन में महान परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए थे। एक विशाल परमेश्वर जिन्होंने कहा आकाश बन जाए तो आकाश बन गई, जिन्होंने कहा कि धरती बन जाए तो धरती बन गई, वही परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात हम देखेंगे ये एक वास्तविक घटना है। ये एक कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, लेकिन ये एक वास्तविक घटना है। लूका शुरुआत करता है 2 अध्याय में, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ। किन दिनों में ऐसा हुआ आगे वो कहता है, उस समय के जो राजा था कैसर, जो अगस्तुस कैसर, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश भी पहले हमारे देश में मुगल जो साम्राज्य थी, उसके बाद ब्रिटिश लोग आए और हमारी देश उनके अंदर में और गुलाम में थी। तो वैसे ही उस समय रोमी साम्राज्य तो जो था, जो यीशु मसीह के जन्म के समय में, और जो कैसर राजा उनका जो पद जो मिलता था, उस राजा का नाम अगस्तुस था। और उस समय के जो राज्यपाल, जैसे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल और माननीय राम नाईक है, वैसे ही उस समय के भी और क्यूरिनियस, उस राज्यपाल का नाम था क्यूरिनियस। अगर हम देखते हैं यहां पर लूका 2 अध्याय 1 से 7 पद तक कई नामों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं क्यों क्यों लूका यहां पर नामों के बारे में बता रहे हैं, कई सारे नाम ही यहां पर है। जैसे हम देखते हैं अगस्तुस कैसर है, क्यूरिनियस है, और आगे वो कहता है यूसुफ है, मरियम है और दाऊद है। ऐसे कई सारे नामों के बारे में और बैथलेम के बारे में वो एक के बाद एक वर्णन कर रहा है। वो कहना चाह रहा है कि भैया जो मैं लिख रहा हूं ये कोई फेंकने वाली बात नहीं है कि भैया ये एक ऐतिहासिक घटना है, ये सच बात है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये कोई दंत कथा नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं ये वास्तव में हुआ है, ये एक वास्तविक घटना है। इसीलिए वो कहता है लूका एक अध्याय अगर हम 1-4 पद तक पढ़ते हैं, वो कहता है कि बहुत से लोगों ने उन बातों का विवरण लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया जो हमारे बीच में घटी है। ठीक वही बात है जो हमें उन लोगों से प्राप्त हुई है जिन्होंने इन बातों को प्रारंभ से ही देखा था और जो वचन के सेवक थे। इसलिए है अति मान्यवर थियोफिलुस, आदम से इन सब बातों को सावधानी से ठीक ठीक जांचने के पश्चात मुझे उचित जान पड़ा कि मैं भी इनको तेरी लेकर मानुसर लिखूं, जिससे कि तू उन बातों की वास्तविकता को जान ले जिनकी तुझे शिक्षा दी गई थी। तो सच में जो लूका यहां पे लिख रहा है वो कहना चाह रहा है कि हमारे बीच में घटी है, वो कह रहा है। और हम आगे देखते हैं ये जो लूका 2 अध्याय में हम लूका जो लिख रहा है वो कह रहा है ये जो अगस्तुस कैसर उस समय के जो राजा था और क्विरिनियुस जो राजपाल था उसी समय में ये घटना हुई है। अगर हम देखेंगे सीरिया जो वर्तमान के समय में और मध्य पूर्व देशों के अंतर्गत आता है और यीशु मसीह जो बैतलेम में जो जन्म लिए हैं वो पश्चिम एशिया के अंतर्गत आता है, इसका मतलब ये एक ऐतिहासिक घटना है, ये असली में हुआ है, इसमें कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। अगर हम 4 पद को देखते हैं, 4 पद में लिखा है अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था गालील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलेम को गया। यहां पर लूका बता रहा है कि यूसुफ जो दाऊद के घराने का था, क्यों यहां पर वो दाऊद के नाम को लेकर आ रहा है, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने एक इसराइल के राजा था जिसका नाम दाऊद था और परमेश्वर ने उस राजा के साथ एक वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने कहा 2 शमूएल अगर हम पढ़ेंगे उसका 7:12-16 तक, परमेश्वर ने दाऊद राजा को कहा था कि मैं तेरे बाद मैं कैसी संतान को उत्पन्न करूंगा और उसका जो राज्य होगा वो कभी अंत नहीं होगा। जो बातें जो वाचा परमेश्वर ने दाऊद राजा के साथ बांधी थी, हम देखते हैं कि दाऊद के घराने यानी दाऊद के वंश से ही यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। आगे वो कह रहा है 5 पद में कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। ध्यान दीजिए ये मंगेतर यानी उनका मंगनी हुई थी, सगाई हुई थी, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था। हम पिछले बात सुन रहे थे अंकल जी के द्वारा कि असंभव की बात थी, मरियम कहने लगी कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो स्वर्गदूत ने कहा जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और यहीं पर यहां पर लूका भी हमें बताना चाह रहा है कि मंगेतर एक एक बात को वो बहुत ही और वर्णन के साथ वो लिख रहा है। आगे वो कह रहा है और ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। यहां पर और एक शब्द को आप ध्यान दीजिए, यहां पर 7 पद में पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि पुराने नियम में और जब याजक बलिदान चढ़ाता था और उस बलि में 3 गुण होना जरूरी था, सबसे पहले उस बलिदान में कि जो मेमना निर्दोष होना चाहिए और दूसरा उस मेमना के अंदर जो और एक गुण होना चाहिए वो मेमना नर होना चाहिए और तीसरा पहलौठा होना चाहिए। यहां पर यीशु मसीह एक पहलौठे के रूप में जन्म लेते हैं क्योंकि यीशु मसीह संसार में आए थे एक बलिदान, अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए। मेरे प्यारों यहां पर जुल्लू का एक एक बात जो बहुत ही और जांच पड़ताल के बाद वो लिख रहा है, वो हमें कहना चाह रहा है कि ये सच में ये घटना हुआ है, जो यीशु मसीह जो परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में आया है वो वास्तविक घटना है। और अगर हम पढ़ते हैं 7 पद में उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रख दिया क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह ना थी। देखिए महान परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला अभी वो चरनी में लेटा हुआ है, बड़ी आश्चर्य की बात है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। सोच के देखिए यहां पर जो परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को बनाया था वही परमेश्वर के लिए आज जगह नहीं है। एक बच्चे के रूप में वो चरनी में लेटा हुआ है। यीशु मसीह संसार की महानता की नजरिया को बदल दिए। लोग हम देखते हैं आज संसार में कि लोग ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और अपने पैसे में, नौकरी में वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऊपर से नीचे आ गए। महान परमेश्वर दिन बनकर इस पृथ्वी पर आए, एक बच्चे के रूप में आए और अभी उनके लिए कोई जगह नहीं है। एक बार अमेरिका की राष्ट्रपति ने इस प्रकार कहा, जो मनुष्य पहली बार चांद पे गया, उन्होंने इस प्रकार कहने लगा, क्या बात है, ये दुनिया की सबसे बड़ी चमत्कार है। लेकिन एक प्रभु के दास ने कहा, नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी चमत्कार यह है कि महान परमेश्वर धरती पर चलने लगा। मेरे प्यारों, सच में सबसे बड़ी जो चमत्कार है कि महान परमेश्वर बच्चे के रूप में चरनी में लेटा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी घटना है। हम देखते हैं लूका इसलिए हमें कहना चाह रहा है कि परमेश्वर जो बच्चे के रूप में इस दुनिया में आया है, ये वास्तविक घटना है। हम देखते हैं कुलिसियों 1:16 में पौलुस कहता है, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वकीय अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, उसी के लिए और उसके उस दुनिया में आने के लिए। उसी के द्वारा और उसी के लिए ये सृष्टि हुई थी कि यीशु मसीह का आने का, उसी के लिए सृष्टि की गई थी। परमेश्वर की अनंतकालीन योजना के अनुसार एक दिन को निर्धारित किया गया था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। इसलिए गलातियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जो परमेश्वर के समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। कैसे हम जान सकते हैं वास्तविक घटना है? कई सारे उदाहरण है बाइबल में। अगर हम इतिहास बाइबल पढ़ते हैं कि पहले शताब्दी के जो यहूदी थे वे लोग एक ही परमेश्वर को मानते थे, एक ही ईश्वर को मानते थे। लेकिन हमारी देश में लोग सर्वेश्वरवाद है, जो कि कहते हैं कि सारे चीजों में परमेश्वर पाया जाता है। लेकिन यहूदी लोग एक ही ईश्वर को मानते थे, बाइबल के परमेश्वर को मानते थे। लेकिन उन्हीं के बीच में क्यों यीशु मसीह आए? क्यों भारत देश में यीशु मसीह जन्म नहीं लिए? क्यों दूसरे जगह में प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लिए? क्यों यहूदी लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आए? क्योंकि वे लोग एक ही ईश्वर को मानते थे और उन्हीं के बीच में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए। और सबसे बड़ी बात है, जो आश्चर्य की बात है, यहूदी लोगों ने उन पर विश्वास किए। ना केवल विश्वास किए, वे लोग अपने प्राण को भी यीशु मसीह के लिए दे दिए। वे लोग यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। मेरे प्यारों, सच में ये एक वास्तविक घटना है। जब हम अदालत में हम देखते हैं, अगर 2 या 4 गवाह बन जाते हैं तो वह मुकदमा बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, कई सारे लोग एक के बाद एक, एक नहीं दो नहीं, कई सारे लोग बताते हैं कि भैया ये वास्तविक घटना है कि यीशु मसीह और जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। जब हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार, मत्ती कैसे सुसमाचार को शुरुआत करता है, वो इस प्रकार शुरुआत नहीं करता है कहानी की तरह, एक बार की बात है, एक बार एक राजा था, ऐसे करके वो शुरुआत नहीं करता है। लेकिन वो ऐसे शुरुआत करता है कि इब्राहिम की संतान और दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अगर हम यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 1 अध्याय, वो भी कैसे शुरुआत करता है, वो कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वही वचन हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते की महिमा। पौलुस भी कहता है 1 तीमोथियस 3:16 में, जो शरीर में प्रकट हुआ, और वो कहता है फिलिप्पियों 2:6-8 तक, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। मेरे प्यारों, एक नहीं दो नहीं, बार बार जो सुसमाचार के लेखक बाइबल में लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए। अगर हम इतिहास को देखते हैं, इतिहास के बीच में भी यीशु मसीह खड़े हैं। उन्होंने इतिहास को 2 भाग में बांट दिया, जैसे हम जानते हैं ईसा पूर्व और ईसवी। बहुत सारे ऐसे गवाह हैं और सच में यीशु मसीह का जन्म वास्तव में हुआ है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये असल में हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, आप यीशु मसीह के पास केवल इसलिए मत आइए कि चंगाई पाने के लिए, आप यीशु मसीह के पास इसलिए मत आइए कि यीशु मसीह आपकी समस्या को दूर करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु मसीह के पास आप इसलिए मत आइए कि आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन इसलिए यीशु मसीह के पास आइए क्योंकि ये वास्तविक है, वो सच्चा है, वो सत्य है, ये असली में हुआ है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। अगर परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया है तो वह हमें अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया, वो हमें बेहतरीन रूप से जानता है, हमारी कमजोरियों को वो जानता है, हमारी स्थिति को वो जानता है। इसलिए इब्रानियों का जो लेखक वो कहता है कि आओ हम हियाव के साथ, बड़ी हियाव के साथ उसके पास जाए कि जिन्होंने हमारी समान परखा गया और वो निष्पाप निकला। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम यीशु मसीह के पास जाए, ये सच में वो वास्तविक है, वो सत्य है, असल में हुआ है। सबसे पहली बात कि जो यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए, ये वास्तविक घटना है। दूसरी बात हम देखेंगे 8 से 14 पद तक, जब यीशु मसीह दुनिया में आए, ये कोई दुख की बात नहीं है, ये आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए है। जब यीशु मसीह दुनिया में आए, ये आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए है। हम देखते हैं अगर 8 से 14 पद तक पढ़ते हैं, 10 पद में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा डरो मत। जब स्वर्गदूत उनके पास आए, जो स्वर्गदूत सभी डर गए थे क्योंकि वे लोग ऐसा कभी नहीं देखे थे। इसलिए स्वर्गदूत उनको कहता है कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यह आनंद का सुसमाचार, एक किस प्रकार का आनंद का सुसमाचार? ना केवल आनंद का सुसमाचार, बाइबल में लिखा है बड़े आनंद का सुसमाचार। ये सुसमाचार क्या है? बाइबल में लिखा है कि हम सभी पापी हैं और कोई भी धार्मिक नहीं है, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर, जो महान परमेश्वर दुनिया में आए, और बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और परमेश्वर ने यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आए और उन्होंने हमारे लिए मृत्यु के दंड को सह लिया और उन्होंने हमारे लिए बलिदान को सहा और तीसरे दिन फिर जी उठा, और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे सारे पाप क्षमा होता है। हम तो नरक की ओर जा रहे थे, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था और हम तो अब भटक रहे थे, पाप में पड़े हुए थे, लेकिन ऐसे समय में यीशु मसीह दुनिया में आए और हमारे लिए उसने दुख को सहा। यह आनंद का सुसमाचार है। आज हम संसार में देखते हैं हर कोई आनंद पाना चाहता है, हर एक लोग आनंद के पीछे हैं। वे लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं, पैसों में और सफलताओं में, कामयाबी में, ऐसे कई सारी चीजों में वे लोग आनंद को ढूंढते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, बाइबल में लिखा है इस सुसमाचार में आनंद है। जब हम इस बात को हम जानते हैं, अरे मैं तो गलत रास्ते में जा रहा था, मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह जो महान परमेश्वर मेरे लिए इस दुनिया में आए और मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? यह है आनंद का सुसमाचार। क्या आज आपके पास वो आनंद है? क्या आज आप आनंदित हैं? इसमें जब हम देखते हैं, जब 500 और 1000 रुपए की नोट बंद हो गई और ये जो समाचार जो था, ये सभी लोगों के लिए आनंद का समाचार नहीं था। कुछ लोगों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन ये जो समाचार है, ये आनंद का समाचार है और सभी लोगों के लिए आनंद है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, सभी लोगों के लिए ये आनंद का समाचार है। ये कैसा आनंद है? अगर हम आगे देखते हैं, लूका कहता है ये आनंद का समाचार ये है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये आनंद का समाचार यह है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो आगे कहता है यही मसीह प्रभु है। यहां पर हम यीशु मसीह के बारे में तीन पद नाम को देखते हैं। यीशु मसीह उद्धार करता है और यीशु जो मसीह है और यीशु प्रभु है। आज हमारी समाज में हम यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे गलत फहमी है। कुछ लोग यीशु मसीह को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह एक बहुत अच्छा व्यक्ति थे। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत ही महान पुरुष थे। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक उत्तम शिक्षक थे। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ये अंग्रेजों का परमेश्वर है, ये ईसाइयों का परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्यारों, आज हम यहां पे देखते हैं ये यीशु मसीह उद्धार करता है, ये यीशु मसीहा है, ये यीशु प्रभु है। कुछ लोग कहते हैं ये कि बाइबल में कहां यीशु मसीह कहता है कि यीशु प्रभु है। यहां पर एक खंड को हम देखते हैं, यहां पर एक पद में हम देखते हैं कि यीशु प्रभु है। यहां पर एक शब्द जो तीन शब्द आया है, यीशु उद्धार करता है, यीशु मसीहा है और यीशु प्रभु है। मसीहा जो पुराने नियम में बताया गया था कि पुराने नियम में जो मसीहा जो राजा हुआ करते थे उनको अभिषेक किया जाता था। और यहां पर वही शब्द जो मसीहा है, जो यीशु मसीह जब जन्म लेते हैं और यीशु को मसीहा के रूप में और स्वर्गदूत कहता है, जो राजा, जो यीशु मसीह जो अंतिम राजा, जो ऐसा महायाजक जो यीशु मसीह, और जो ऐसा मसीहा है जो हमें और हमारे लिए एक सबसे अंतिम बलिदान को चढ़ाया, ऐसा जो मसीहा जो हमें सचमुच पापों से बचाता है। अगर हम लूका उसका एक अध्याय 32 पद को पढ़ते हैं, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। और सच में यीशु मसीहा है और यीशु प्रभु है और यीशु उद्धार करता है। क्यों? ये लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार है। मनुष्य की समस्या क्या है? पानी की कमी, बेरोजगारी, गरीबी, ये नहीं है मनुष्य की समस्या, ये पाप है। मनुष्य की समस्या धन में नहीं है, लेकिन मनुष्य की समस्या मन में है। बाइबल बताती है कि मनुष्य पाप में मरा हुआ है और उसके पास कोई भी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि वो पाप में मरा हुआ है और मनुष्य पूरी तरह से भ्रष्ट है। कि एक पतित जो मनुष्य है वो कभी परमेश्वर की आज्ञा को वो पूरा नहीं कर सकता है, कभी परमेश्वर को वो प्रेम नहीं कर सकता है। ये पाप में मरा हुआ मनुष्य कभी भी वो परमेश्वर को खोज नहीं सकता है। एक पाप में मरा हुआ मनुष्य कभी भी अपने आप परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है। सच में मेरे प्यारों, जो मनुष्य की जो दशा है बहुत ही दयनीय है, बहुत ही शोचनीय है। और इसीलिए यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के पास जा नहीं सकता था क्योंकि वो पापी है। इसीलिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि उनको पापों से बचाने के लिए। एक बार स्कूल में एक छोटा लड़का था और स्कूल में जैसे ही गया और टीचर कहने लगा कि हे मुन्ना, आपकी जो बदबू में, जो आपकी जुराब में बदबू आ रही है, चाहो बाहर जाके और उसको साफ करके आओ। तो वो छोटा लड़का बाहर गया और बाहर जाकर फिर वापस आया और मैडम कहने लगी कि अभी भी आपकी जुराब में बदबू आ रही है। और छोटा लड़का कहने लगा कि मैं मेरे जेब के अंदर मैंने रखा है। मेरे प्यारों, आज भी बहुत सारे लोग अपने आप से प्रयास करते हैं कि उद्धार प्राप्त करने के लिए, अपने आप से कोशिश करते हैं कि उद्धार को कमाने के लिए। लेकिन सच तो यह है कि कभी भी हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि हमारे सारे धर्म का जो कार्य है ये मेले चिथड़ों के समान है। और आगे भी हम और भी देखते हैं क्यों ये आनंद का सुसमाचार है। अगर हम 13 और 14 पद में देखते हैं, इसमें लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में शांति हो। बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के मित्र नहीं थे, हम पाप में मरे हुए थे, और इसीलिए परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक दूरी आ गई, एक अशांति थी और हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और हमारे लिए उसने दुख को सहा और जो अशांति थी प्रभु यीशु मसीह वो दूरी को उसने दूर कर दिया। इसलिए हम पढ़ रहे थे यशाया उसका 9:6 में, वो शांति का राजकुमार है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परम प्रधान जो परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार। मेरे प्यारो, कि हम अपने धर्म के कार्य से, रीति रिवाज से हम कभी भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकते हैं, हम कभी भी उद्धार को प्राप्त कर नहीं सकते हैं, सिर्फ ही सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए ये शांति यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें मिलता है। और आगे हम देखते हैं कि ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है। यहां पर आश्चर्य की बात है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसका जो पहला संदेश किसी राजा के पास नहीं गया, इसका जो पहला संदेश किसी धर्मगुरुओं के पास भी नहीं गया, लेकिन यहां पर हम देखते हैं एक ऐसा ऐसे लोगों के पास ये संदेश गया जो समाज से बाहर थे, जो चरवाहे थे। बाइबल में लिखा है कि लोग मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, जो चरवाहे थे, जो समाज से बाहर थे, ऐसे लोगों के पास इस संदेश पहुंचाया गया। इसका मतलब यह है कि सुसमाचार सब लोगों के लिए है, ना केवल यहूदियों के लिए है, ना केवल और किसी बड़े जाति के लिए है, लेकिन ये जो सुसमाचार सब लोगों के लिए है। अगर हम इस लू का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, बार बार लू का हमें बताना चाहता है कि ये जो सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। हम देखते हैं ये सुसमाचार सामरियों के लिए भी है, ये सुसमाचार महिलाओं के लिए भी है, ये सुसमाचार जो चुंगी लेने वाले ऐसे लोगों के लिए भी है, ये सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। जब यीशु मसीह दुनिया में आए, वो राजा के रूप में नहीं आए, लेकिन एक बच्चे के रूप में आए। क्यों यीशु मसीह बच्चे के रूप में आए? हम सब जानते हैं एक जो छोटा जो बच्चा होता है वो किसी के पास भी जा सकता है, वो किसी जाति को नहीं देखता है, काला या गोरा, कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े हैं, ये सब नहीं देखता है। लेकिन वो बच्चा किसी के पास भी वो चले जाता है। क्यों? वैसे ही यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में आए, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह सभी लोगों के लिए है, ना कि अंग्रेजों के लिए, ना कि यहूदियों के लिए, भारत सारे भाषियों के लिए, सभी लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इसीलिए एक प्रभु का दास ने सही कहा है कि सुसमाचार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, लेकिन ये सार्वजनिक है। ये सुसमाचार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, लेकिन ये सार्वजनिक है, यह विश्वव्यापी सुसमाचार है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में मेरे प्यारों, कि परमेश्वर ने हमारे लिए किसी समाज सुधारक को नहीं भेजा, परमेश्वर ने हमारे लिए किसी बाबा को नहीं भेजा है, परमेश्वर ने हमारे लिए किसी नेता को नहीं भेजा है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजा है, जो कि पापों से उद्धार देता है, जो कि अनंत नरक से वो बचाता है। जो शांति परमेश्वर के साथ नहीं थी, उस वो परमेश्वर वो शांति स्थापित करता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े गुरु आए, बड़े बड़े महात्मा आए, बड़े बड़े दार्शनिक आए, लेकिन कोई भी उद्धार लेके नहीं आए। लूका 19:10 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। पहला तीमोथियुस 1:15 में लिखा है, मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह शांति को लेकर आए, यीशु मसीह उद्धार को लेकर आए, यीशु मसीह आनंद को लेकर आए। यह है आनंद का सुसमाचार। क्या आज हमारे पास वो आनंद है? क्या आज हमारे पास उद्धार है? क्या आज हमारे पास वो शांति है? अगर परमेश्वर के साथ शांति नहीं है, तो हमारे दिल, हमारे हृदय कभी भी अशांति नहीं होगी। आज मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मुझे कहानी याद आ रही है, एक बार एक लालची राजा था, शायद आप लोग जानते होंगे, और वो हमेशा प्रार्थना करता था कि वो अमीर बन जाए। एक दिन स्वर्गदूत ने कहा कि तुम क्या चाहते हो मांगो, और उस राजा ने कहा मैं दुनिया की सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए मैं जो भी छू वो सोना बन जाए। और स्वर्गदूत ने कहा सोच लो भाई, तो राजा ने कहा मैंने सोच लिया है। और स्वर्गदूत ने कहा ठीक है, वो वरदान आपको मिल गया। और थोड़ी देर के बाद राजा ने सोचा ये सच है क्या झूठ है, जांचने के लिए सबसे पहले उसने दीवार को छुआ और दीवार भी सोना बन गई। और राजा बहुत खुश हो गया, क्या बात है, मैं अभी दुनिया की सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने कुर्सी को छुआ, कुर्सी भी सोना बन गई, और बहुत खुश हो गया। और थोड़ी देर के बाद उनको प्यास लगी, और जैसे ही ग्लास को छुआ ग्लास भी सोना बन गई। और अभी उनकी जो खुश धीरे धीरे और कमी होने लगा। और थोड़ी देर के बाद उनकी छोटी बेटी दौड़ दौड़ कर आई और उनके गोद में बैठ गई, उनकी छोटी बेटी भी सोना बन गई। और राजा चिल्ला चिल्ला कह रहा है मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरे प्यारो, आज हमें क्या जरूरत है? क्या हमें दुनिया की अमीर आदमी बनना चाहते हैं? क्या आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो उद्धार की आवश्यकता है। सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो शांति, परमेश्वर के साथ जो शांति है। इसीलिए बाइबल में लिखा है प्रेरित के काम 4:12 में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, सिर्फ ही सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आज आपके पास वह उद्धार है? सच में ये आनंद का सुसमाचार है, ये सभी लोगों के लिए है। आखिरी बात हम देखेंगे 15-20 पद तक, आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। 15-20 पद तक, सच में ये एक वास्तविक घटना है जो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए, और ये दुख की बात नहीं है लेकिन ये आनंद का सुसमाचार है और सब लोगों के लिए है। तो इसलिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, क्योंकि वो उद्धार करता है, वो मसीहा है, वो प्रभु है, इसलिए आइए हम उसकी स्तुति करें। अगर हम 16-17 पद को हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है 15 पद में भी देखते हैं, और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे आओ हम सीधे बैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है और जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है देखें। और आगे वे लोग जाकर मरियम और यूसुफ के पास पहुंचे और उन्होंने उस बच्चे को चन्नी में लेटा हुआ पाया। ये देखकर उन्होंने वो बात प्रकट कर दी जो इस बच्चे के संबंध में उनसे कही गई थी। यहां पर हम देखते हैं एक आश्चर्य की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है कई सारे स्वर्गदूत आए, एक नहीं दो नहीं, यहां पे लिखा है कि एक बड़ा समूह, यानी स्वर्गदूत लोग भी खुशियां मना रहे हैं, एक जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि जो बच्चा जो जन्म हुआ है कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये मसीहा है जिनका काफी समय से इंतजार था, ये उद्धार करता है, ये प्रभु है। और इसीलिए और जो स्वर्गदूत को मालूम है कि कैसे मनुष्य पाप में गिरा हुआ था, उनको यह भी मालूम था कि मनुष्य कभी भी अपने आप को बचा नहीं सकता था, और उनके लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और ये जो बच्चा जन्म लिया है वो उद्धारकर्ता है, वो मसीहा है। इसीलिए स्वर्गदूत सारे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। लिखा है आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में शांति जिनसे वो प्रसन्न है। और हम आगे भी देखते हैं कि सभी ये बात सुनकर आश्चर्य हो रहा है, चकित हो रहा है, क्योंकि वे लोग कभी ऐसा नहीं देखे थे, वे लोग कभी ऐसा नहीं सुने थे। और यहां पर वो चरवाहे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। 20 पद में लिखा है चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था सब कुछ वैसा ही सुन और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। सच में जब चरवाहों को मालूम हो गया कि ये सच में ये जो यीशु मसीह एक उद्धार करता है, सच में यीशु एक मसीहा है, और यीशु प्रभु है, तो वे लोग और इस बात को जानते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौट गए। अगर हम देखेंगे उनका स्थिति और हमारा स्थिति में काफी अंतर है। उस समय यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरे थे, लेकिन अभी यीशु मसीह जो लगभग 2000 साल पहले वो क्रूस पे मरे और तीसरे दिन फिर जी उठे और हमारे पापों को उन्होंने क्षमा किया है। जब हम इस बात को जानते हैं, जो महान काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, अगर हम उस बात को हम जानते हैं तो हम अपने आप स्तुति करने लगेंगे। सच में वो स्तुति के योग्य है, वो मसीहा है, यीशु उद्धार करता है, यीशु प्रभु है। हम कैसे उसकी स्तुति कर सकते हैं? जैसे यूहन्ना 4:23-24 में लिखा है कि परमेश्वर आराधक को ढूंढता है, वो सच्चे आराधक को वो ढूंढ रहा है। और कैसे उसकी हम स्तुति कर सकते हैं? आत्मा और सच्चाई से। और ये सच बात है कि यीशु मसीहा है, और ये सच बात है कि यीशु प्रभु है, और ये सच बात है कि यीशु उद्धार करता है। क्यों ना हम सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्यों ना हम उस सच्चाई से उसकी स्तुति करें। जैसे कई दिन जिस प्रकार हम कई दिनों के बाद हम बड़ा दिन और मनाएंगे, इस बात को हम ध्यान में रखें कि यीशु सच में प्रभु है, वो उद्धार करता है और वो मसीहा है। और रोमियो 12:1 में लिखा है, पौलुस कहता है, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। हम जो आराधना जो स्तुति खाली रविवार के दिन में नहीं, लेकिन हमारा जीवन भर, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, लेकिन मरते समय तक प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करना है। जब हम प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं उसका 4:5 में बहुत सारे स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर रहे हैं। वो कहते हैं, पवित्र 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 जो सर्वशक्तिमान है। बहुत सारे जो स्वर्गदूत उसकी स्तुति करते हैं। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं हमारी दिनचर्या के कार्य में, ना केवल रविवार के दिन में, बल्कि हमारी कार्य के द्वारा, हमारे जीवन में, हमारी और कार्यस्थल में, कि हम उस प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति करते हैं? सच में राजा यीशु आए हैं, इसलिए हम गीत गाते हैं कि चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। वो राजा यीशु जो मसीहा वो आए हैं, उसने एक महान कार्य क्रूस पर किया है। जब हम उस बात को हम समझते हैं तो हम उस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। और सच में ये एक वास्तविक घटना है और ये आनंद का सुसमाचार है जो सब लोगों के लिए है। और आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। आइए हम अपने आपको जांच लें कि आज हम किसकी स्तुति कर रहे हैं, या नौकरी, धन दौलत, आज हम किसकी हम आराधना करते हैं? क्या हम यीशु मसीह से ज्यादा हम दूसरे चीजों को हम महत्व देते हैं? हम अपने आप को जांच लें। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज आपके लिए एक आनंद का सुसमाचार है कि उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। क्यों ना हम उस पर विश्वास करें, क्यों ना हम उसकी स्तुति करें।